الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک اندرانہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاةً وسلاماً عليك يا رسول اللہ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے عقیدہ توحید کے متعلق بیان کیا تھا اور آج انشاءاللہ تعالی عقیدہ رسالت کے متعلق بیان کریں گے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم عقیدہ رسالت کو اسلامی عقائد میں بڑی اہمیت حاصل ہے اور جب تک انسان رسالت کا قائل نہ ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر سرکار کے رسول ہونے پر ایمان نہ لائے مسلمان نہیں ہو سکتا ایک ہزار کیا ایک لاکھ مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے مسلمان نہیں اور ایک مرتبہ سچے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پڑھ لیا دار اسلام میں داخل ہو گئے آج ہم یہ دیکھیں گے عقیدہ رسالت کیا ہے نبی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا اس کی وجہ کیا تھی نبی کس لیے ہوتا ہے نبی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے آج اس پر غور کریں گے اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اشیاء پیدا فرمائی اور ان کو سمجھنے کے لیے ان کا ادراک کرنے کے لیے ہر انسان کو پانچ حواس عطا فرمائے جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت لامسہ، قوت ذائقہ، قوت شامہ، یہ پانچ قوتیں ہیں جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں. اس کو اور آسان کر دوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. سننے کی قوت، قوت سامعہ، دیکھنے کی قوت، قوت باصرہ، سونگنے کی قوت، قوت شامہ، چکھنے کی قوت، قوت ذائقہ، اور چھونے کی قوت، قوت لامسہ. اب بات آپ سمجھ گئے نا؟ یہ جتنی بھی اشیاء ہیں اس کائنات میں وہ ان پانچ حواس کے تحت ہیں، ان کا ادراک ان کے سوا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس پوری دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھ کر جن کا ادراک ہوتا ہے، جن کی سمجھ ہم حاصل کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ سن کر اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اس کا ادراک ہوتا ہے. جیسے آواز، آواز کو دیکھا نہیں جا سکتا، آواز کو سنا جا سکتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ادراک سونگ کر ہوتا ہے، جیسے خوشبو یا بدبو، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو سنا نہیں جا سکتا، اس کو سونگا جا سکتا ہے. تو وہ کسے؟ قوت شامس. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو چھو کر ان کا ادراک کیا جاتا ہے کہ یہ چیز ٹھوس ہے، نرم ہے، سخت ہے، کیسی ہے. آپ اس کو چھو لیں، آپ کو اس کا علم ہو جائے گا. بات سمجھ گئے نا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو چکھ کر اس کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے. مثلا ذائقہ، ایک کھانا آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے، کیسا، دیکھ کر بتا سکتے ہیں، یا اس کو چھو کر بتا سکتے ہیں، یا اس کو سونگھ کر بتا سکتے ہیں. جب تک چکھیں گے نہیں پتا نہیں چلے. معلوم یہ ہوا کہ خالق کائنات نے یہ پانچ حواس جو ہر انسان کو عطا کیے، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، چھونے کی قوت، سونگنے کی قوت، یہ جتنے بھی پانچ حواس ہیں ہر انسان کو عطا کی، اس لیے کہ اس پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق ان پانچ حواس سے ہے. ان پانچ حواس سے ہے. جس کو سنا جائے، ہم نے قوت سامعہ سے اس کا علم حاصل کر لیا. جس کو سونگا جائے، قوت شامہ سے اس کا علم حاصل کر لیا. جس کو دیکھا جائے، قوت باصرہ سے اس کا علم حاصل کر لیا. جس کو چھوا جا سکے، قوت لامسہ سے اس کا علم حاصل کر لیا. جس کو چکھا جا سکے، قوت ذائقہ سے اس کا علم حاصل کر لیا. بات سمجھ گئے نا؟ یہ پانچ حواس جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کیے، یہ عطا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اس پوری کائنات میں جتنی اشیاء ہیں ان کا ادراک، ان کا علم انہی پانچ حواس سے حاصل کیا جا سکتا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ پانچ حواس سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. اب اگر کوئی ذات ایسی ہو جسے دیکھا نہ جا سکتا، جسے سنا نہ جا سکے، جسے چھوا نہ جا سکے، جسے سونگا نہ جا سکے، جسے چکھا نہ جا سکے، اس کا علم کیسے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا علم کیسے حاصل کرے؟ بھائی جس چیز کو چھوا جا سکتا تھا ہم نے چھو کر پکڑ کے اس کا علم حاصل کر لیا. جس کو آنکھ سے دیکھا جا سکتا تھا دیکھ کر علم حاصل کر لیا. جس کو سونگا جا سکتا تھا اس کی خوشبو یا بدبو سونگ کر علم حاصل کر لیا. جس کو سنا جا سکتا تھا قوت سامعہ سے اس کا علم حاصل کر لیا. لیکن اگر کوئی ایسی ذات ہو جس کو دیکھا نہ جا سکے، جس کو سنا نہ جا سکے، جس کو چھوا نہ جا سکے، جس کو سونگا نہ جا سکے، جس کو چکھا نہ جا سکے، اس کا ادراک ہم کیسے کریں؟ اس کا علم ہم کیسے حاصل کریں؟ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والوں کی ذات وہ ہے کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو سنا نہیں جا سکتا، اس کو چھوا نہیں جا سکتا، اس کو سونگا نہیں جا سکتا، اس کو چکھا نہیں جا سکتا. تو پھر خدا کی معرفت کیسے ہو؟ خدا کا ادراک उसकी मौजूदगी का एहसास इदराक कैसे हो, उसका इल्म कैसे हो, यही बताने के लिए नबी आता है। बात समझ गए? जिस जात को आप देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, जिसकी आवाज सुन नहीं सकते, उसी को समझाने के लिए, उसी की मारिफत कराने के लिए नबी की जरूरत है। नबी या रसूल के आने का मकसद समझ के, नबी जमीन पर खालिक कायनात का नाइब होता है। बड़ा जरूरी था कि बंदों और खुदा के दरमियान एक जात हो, इसलिए कि बंदे जमीन पर हैं और खुदा आसमान पर। वैसे तो खैर हर जगह है, लेकिन आसमान पर। अब ये हम जमीन पर, वो आसमान पर, बल्कि उससे भी अलग ऊपर। उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कैसे उसका इदराक करें, कैसे उसका इल्म हासिल करें। बड़ा जरूरी था कि बंदों और खुदा के दरमियान एक जात हो, और वो ऐसी जात हो उसका ताल्लुक खुदा से भी हो, उसका ताल्लुक बंदों से भी। एक ताल्लुक खुदा से हो और दूसरा ताल्लुक बंदों से हो, एक ताल्लुक मखलूक से हो, दूसरा ताल्लुक खालिक से हो। उसका काम ये हो खालिक के पैगामात मखलूक तक पहुंचाए, मखलूक की गुजारिशात खालिक तक पहुंचाए। बात समझ गए ना? इसीलिए नबी की जरूरत थी। नबी की जरूरत इसीलिए थी, पता चला नबी खुदा की मारिफत कराने के लिए आता है, नबी खुदा की पहचान कराने के लिए आता है, नबी खुदा की जात को पहचानवाने के लिए आता है, और नबी बंदों को खुदा से मिलाने के लिए आता है। अब एक जरूरत तो ये हो गई, नबी का काम क्या है? बंदों को खुदा की मारिफत कराए, बंदों को रब से मिलाए, उसकी मारिफत, उसकी पहचान बंदों को कराए। नबी की जरूरत इसलिए। अब देखें हवास, जो हमने आपको बताया पांच हवास है ना, हवास खमसा, इनसे हम अशिया का इल्म हासिल करते हैं, लेकिन बाद औकात हमारे ये हवास भी धोखा खा जाते हैं। ये हवास जो है ना, बाद औकात धोखा खा जाते हैं। कैसे? इसकी मिसाल ये है, आप रेलगाड़ी में बैठ जाइए, जब वो तेजी के साथ मंजिल की तरफ रवा होगी, रास्ते में जो दरख्त होंगे, दाएं बाएं जो चीजें होंगी, दरख्त हैं, इमारतें हैं, मकानात हैं, बिल्डिंग है, जितनी भी हैं, वो सब आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी। आएंगी नहीं आएंगी? आएंगी ना। कभी रेल में बैठे हो? नहीं, कोई भी नहीं बैठा। अगर बैठे तो बोल शुक्र जाग भी रहे, मैंने कहीं सो नहीं जाए। तेजी में जब जा रहे हैं ना, तो रेल तेजी में आगे बढ़ रही है, रेल हो या बस हो, कोई भी हो, जितनी तेजी से आगे बढ़ेगी, तो दाएं बाएं जो इमारतें, जो दरख्त है ना, आपको दौड़ते हुए नजर आए। तो अब ये बताएं, क्या वो दौड़ रहे, बिल्डिंगे दौड़ रही है, मकाना दौड़? नहीं, हमारे हवास ने धोखा खाया या नहीं खाया? धोखा खाया ना। इस धोखे को समझाने के लिए अकल को पैदा किया। जब हवास धोखा खा जाए तो अकल रहनुमाई करती है। बात समझ गए? हवास ने धोखा खाया कि दरख्त दौड़ रहे हैं, बिल्डिंगें दौड़ रही हैं, लेकिन अकल ने कहा नहीं, दौड़ नहीं रहे, तुम तेजी से जा रहे हो। जिस सवारी पर तुम हो, तुम तेजी से जा रहे हो, ये नहीं दौड़ रहा, ये तो अपनी जगह है। अगर दौड़ रहे होते तो सवारी को रोक कर देखो, जैसे सवारी रोकी वो अपनी जगह है, अरे ये तो अपनी जगह, तो वो जो दौड़ रहे थे वो कहां गए? कहा वो पीछे गए, वो नहीं गए, वो अपनी जगह है, तुम आगे बढ़ गए। क्या मतलब? अशिया को समझने के लिए हवास, अशिया को समझने के लिए हवास, उनका इदराक करने के लिए। और जब हवास धोखा खा जाए तो उसकी रहनुमाई अकल करती है। हवास ने धोखा खाया कि दरख्त दौड़ रहे हैं, अकल ने रहनुमाई की, नहीं दौड़ नहीं रहे, अपनी जगह है, तुम दौड़ रहे हो, जिस सवारी पर हो वो दौड़ रही है। बात समझ गए? हवास ने धोखा खाया, अकल ने रहनुमाई की। अब बताओ, अकल धोखा खा जाए तब कौन रहनुमाई करे? हवास ने धोखा खाया, अकल ने रहनुमाई की। अब जब अकल धोखा खा जाए तब कौन रहनुमाई करे? जहां पर अकल धोखा खा जाए वही नबी रहनुमाई करता। اسی لیے نبی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خالق کائنات نے اپنے اور بندوں کے درمیان ایک ذات کو اسی لیے رکھ دیا، میں نے تمہیں اشیاء کا علم حاصل کرنے کے لیے پانچ حواس، حواس خمسہ عطا کر دیے، یہ تمہاری رہنمائی کریں گے، ان کے ذریعے تم علم حاصل کرو۔ لیکن جہاں پر تمہارے حواس دھوکہ کھا جائیں عقل رہنمائی کرے گی، اور جہاں عقل بھی دھوکہ کھا جائے میرا نبی تمہاری رہنمائی کرے گا، میرا نبی تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی نبی کی ضرورت کیوں؟ اللہ کو، اللہ اور بندوں کے درمیان، اللہ اور بندوں کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان، رب اور بندوں کے درمیان ایک ذات ایسی رکھ دی جس کا تعلق اللہ سے بھی ہے، اس کا تعلق بندوں سے بھی، وہاں کے پیغامات یہاں پہنچا رہا ہے، بندوں کی گزارشات رب تک پہنچا رہا ہے۔ اس لیے نبی کی ضرورت ہے۔ عقل اگر رہنمائی کرتی تو یہ کافر اپنے ہاتھ سے تراشیدہ بتوں کے سامنے کیوں جھکتے؟ ان میں بھی عقل تھی نا، عقل نے رہنمائی کی، عقل بھی دھوکہ کھا گئی، گمراہ ہو گئی۔ اسی لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ قرآن نے کہا ھو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے کون؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ و منبر، جس نے اپنے نبی کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ کس لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام دینوں پر غالب کر دے، اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر کہ مشرکوں کو ناپسند ہو، ان کو کبھی یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن وہی ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھیجا، اور ایسا بھیجا کہ سب پر غالب کر دیا۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی نبی کی ضرورت کیوں؟ نبی خدا کی معرفت کراتا ہے، نبی بندوں کو خدا تک پہنچاتا ہے، نبی خدا کا پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے، نبی بندوں کی گزارشات خدا تک پہنچاتا ہے، نبی خدا اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اور جب تک نبی کو نہیں مانو گے خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ مین پرسنالٹی نبی کی ذات ہے، اسی لیے لا الہ الا اللہ ہزار مرتبہ کہہ دو مسلمان نہیں ہو سکتے، ایک مرتبہ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دار اسلام میں داخل، پتہ یہ چلا کہ نبی کو ماننا ضروری ہے۔ ضروری ہے یا نہیں؟ ورنہ خدا کو تو سبھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، جتنے بھی ریلیجن موجود ہیں، جتنے ریلیجن موجود ہیں سب مانتے ہیں، لیکن کوئی بت کی شکل میں، کوئی چاند سورج کی شکل میں، کسی نے چاند سورج کو دیکھا یہ خدا ہے، کسی نے ہوا کو کہہ دیا خدا ہے، کسی نے آگ کو کہہ دیا خدا ہے، یہ آگ پرست جو ہے یہ آگ کو خدا مانتے ہیں، سب خدا کو مان رہے ہیں۔ اسلام نے سب سے بہترین تصور دے دیا اور کہا خدا کو مانو اور رسول کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تک رسول کو نہیں مانو گے مسلمان نہیں، جب تک عقیدہ رسالت نہیں مسلمان نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو مسلمان نہیں، اور سچے دل سے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان ہو۔ اسی لیے سرکار نے اپنی ذات کے متعلق پہلے پوچھا، اپنی ذات کے متعلق پہلے پوچھا کب؟ اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغ اسلام کا حکم دیا، سرکار نے تبلیغ شروع کر دی، لیکن اعلانیہ نہیں، خاموشی سے، جیسے جیسے حکم مل رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، چھپ کر چھپ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا گزر گیا، پھر حکم ہوا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی، علی الاعلان ہماری توحید اور اپنی رسالت کا ڈنکا بجائیے۔ جیسے ہی حکم ربی ہوا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے، کوہ صفا پر سرکار کھڑے ہوئے، رونق افروز ہوئے، और वहां खड़े होकर हुजूर ने सबको पुकारा। शायद लिखता है नबी पाक अलैहि सलाम ने पुकारा और फरमाया, चढ़ा को है सफा पर एक दिन इस्लाम का हादी, नजर के सामने थी पस्त इंसानों की आबादी, निदा दी ऐ कुरैशी और तुम मर्दों इधर आओ, तुम अपने काम धंधे आज तय कर दो इधर आओ। कोहे सभा पर सरकार खड़े हैं और बुला रहा कुरैशियों को, कबीले वालों को, सब इधर सब आ। फरमाया, सुनो अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि इसको हो सार के पीछे पहाड़ों की बुलंद और आहिनी दीवार के पीछे छुपी है रहजनों की फौज तुम पे वार करने को, घरों के लूटने को शहर के मिसमार करने को, घरों के लूटने को शहर के मिसमार करने को। फरमाया, मैं पहाड़ पे खड़ा हूँ बुलंदी पर और तुम पस्ती में हो, जो बुलंदी पर हो वो दोनों जानिब देख सकता है बनिस्बत उसके कि जो पस्ती में हो, ठीक है ना। मैं पहाड़ पर हूं, इस तरफ भी देख सकता हूं, उस तरफ भी देख सकता हूं। अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, अगर मैं ये कहूं कि पहाड़ की उस जानिब एक लश्कर जर्रार खड़ा जो अनकरीब तुम पर हमला करने वाला है, तो बताओ क्या मेरी बात पर तुम यकीन कर लो। कौन कह रहा है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किससे कह रहे हैं? कुरैश से, अपने कबीले वालों से, खानदान वालों से, काफिरों से। मेरे मुतालिक बताओ क्या कहते थे? एक लश्कर जर्रार है जो अनकरीब हमला करने वाला, क्या तुम मेरी बात मान लो, मेरी बात पर यकीन कर लो? तो क्या हुआ? जितने भी मौजूद थे छोटे से लेकर बड़े तक सबने यक जबान होकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आपने आज तक झूठ नहीं बोला। अगर आप ये कहेंगे कि एक लश्कर खड़ा है जो हमला करने वाला है, हम बिना चूनो चरा बगैर देखे हम मान लेंगे। क्या कहा? बगैर देखे मान लेंगे। तो सरकार ने क्या फरमाया? जब तुम बिन देखे लश्कर को मान रहे हो, मेरे कहने से यानी तुमने लश्कर को नहीं देखा, मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि एक लश्कर है और तुम क्या कह रहे हो, हम मान लेंगे। जब मेरे कहने से बिन देखे लश्कर को मान रहे हो, तो मेरे ही कहने से बिन देखे खुदा को भी मानो। लश्कर को नहीं देखा ना, अब मैं कह रहा हूं, तुम कहते हाँ जी मान लेंगे। क्यों? आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, अमानत और सदाकत और दियानत की गवाही सरकार ने अपनी जात के मुतालिक दिलवा दी। अब फंस गए, अब क्या करें? फरमाया, मेरे कहने से बिन देखे लश्कर को मान रहे हो, तो मेरे कहने से बिन देखे खुदा को भी मान लो। लेकिन अजली तौर पर जिनकी किस्मत में शकावत लिखी हुई थी उनको तो नहीं मानना था। उन्होंने फौरन कहा कि नहीं, ये नहीं मान सकते, ये नहीं मान सकते। सरकार ने अपने मुताबिक क्यों पूछा? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जाकिर है। ला इलाहा इल्लल्लाह इरशाद है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुर्शिद है। ला इलाहा इल्लल्लाह दावत है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दाई है। ला इलाहा इल्लल्लाह हिदायत है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हादी है। सरकार ने इसलिए पूछा, जब तक हादी को नहीं मानेंगे तो हिदायत को कैसे मानेंगे? जब तक दाई को नहीं मानेंगे तो दावत को कैसे मानेंगे? जब तक मुर्शिद को नहीं मानेंगे तो इरशाद को कैसे मानेंगे? इसीलिए अपनी जात के मुतालिक पूछा, बताओ मेरे मुतालिक क्या कहते हैं? हाँ आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। और जब खुदा की वहदानियत के मुतालिक तवज्जो दिलाई, कहा नहीं ये नहीं मानते। पता ये चला कि मानना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने उन्हें माना वही मुसलमान, जिसने उन्हें दिल में बसाया वही मोमिन, जिसने उनको सबसे ज्यादा चाहा उसी का ईमान सबसे ज्यादा कामिल। मेन पर्सनालिटी रसूल की जात, जब उन्हीं को नहीं माना तो फिर किसको माना? उन्हीं के कहने से खुदा को माना ना? किसी ने खुदा को देखा है? है कोई जिसने खुदा को देखा? फरिश्तों को देखा? जन्नत को देखा है? देखना चाहते हो? कहते नहीं, नहीं देखना चाहते। इसका मतलब गौर से नहीं सुन रहे? नहीं नहीं नहीं, हर जगह खुदा को देखा नहीं, जन्नत को नहीं, देखना चाहते नहीं, देखना भी नहीं चाहते। देखना तो चाहिए ना कम से कम। तो फिर वही काम करो जो जन्नती जन्नती वाले जन्नत में जाने वाले करते हैं। वही काम करो जो जन्नती करते हैं। और जन्नती क्या करते हैं? कभी नमाज कजा नहीं करते, समझ गए? कभी हुकूक गसब नहीं करते, कभी अमानत में खयानत नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी की दिल आजारी नहीं करते, कभी किसी का माल गसब नहीं करते, कभी किसी के माल जान या किसी चीज पर भी कसदन कब्जा नहीं। वो तो जहन्नमी वाले काम। तो हम जाना चाहते हैं जन्नत में और काम करे जहन्नमी वाले, तो कैसे जन्नत में जाएंगे? तो खुदा को नहीं देखा, जन्नत को नहीं देखा, फरिश्तों को नहीं देखा, मलाइका को नहीं देखा, जहन्नुम को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, लेकिन मानते हैं या नहीं? क्यों मानते हैं? सरकार की जबान से निकल गया, हमने मान लिया। पता ये चला कि मानना रसूल को है, और ऐसा मानना है कि ब्लैंक फेस करना है, जो रसूल की जबान से निकल गया वही हक है, वही सच। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी, उनका नाम था हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी एक आदत थी, सरकार की महफिल में बैठते, वाज़ो नसीहत सुनते, जो लफ्ज हुजूर की ज़बाने मुबारक से निकलता फौरन लिख लेते। देखो साहबा की अकीदत मोहब्बत, आका की ज़बान से जो लफ्ज भी निकला फौरन लिख लेते। ऐसे नहीं कि वाज़ो नसीहत लिख रहे हैं या हुजूर ने कोई हिदायत अता फरमाई, किसी चीज की तलकीन फरमाई, किसी चीज का हुक्म दिया, ऐसा नहीं। जो भी लफ्ज निकला फौरन लिख। कुछ लोगों ने इतराज किया, उन्होंने कहा अब्दुल्ला ऐसा ना करो। क्यों? इसलिए कि कभी सरकार गुस्से के आलम में है, गैज़ो गज़ब के आलम में, कभी खुशी और मुसर्रत के आलम में। हो सकता है के गुस्से में कोई बात जबाने मुबारक से ऐसी निकल जाए जो ना लिखी जाए, मतलब जिसका लिखना मुनासिब ना हो। तुम हर बात लिख रहे हो, जो लफ्ज निकलता है फौरन लिख लेते, का फिर मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो, जब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ो नसीहत फरमाए, तकरीर फरमाए, तबलीग फरमाए, वाज फरमाए, उस वक्त जो जबाने मुबारक से निकले वो लिखो, हर बात ना लिखो। इन्होंने कहा ठीक, इन्होंने लिखना मौकूफ कर दिया, छोड़। ये बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंची। सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला को बुलाओ। बुलाया, फरमाया तुमने क्यों लिखना छोड़ दिया? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप आपके कुर्बान। मेरी आदत थी मैं हर बात लिखता था। कुछ लोगों ने कहा कि हर बात ना लिखो, हुजूर गुस्से के आलम में है, कभी गैज़ो गज़ब के आलम में है, कोई बात ऐसी ज़बाने मुबारक से निकल जाए जो लिखना जिसका लिखना मुनासिब ना हो। तो मैंने लिखना छोड़ दिया। उन्होंने कहा सिर्फ वाज़ो नसीहत लिखो, तबलीग करें, वाज फरमाए, नसीहत फरमाए, वो लिखो। अब सुनो अपने आका का जवाब। जब सहाबी ने यह कहा, फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या अब्दुल्लाह उक्तुब, ऐ अब्दुल्ला लिखो जो मेरी जबान से निकले, खुदा की कसम मोहम्मद की जबान पर हक के सिवा कुछ आ ही नहीं सकता।
या रसूल, फरमाया मोहम्मद की जबान पर हक के सिवा कुछ आ नहीं सकता, जो हक होगा वही मेरी जबान पर आएगा और जो जबान पर आएगा खुदा की कसम हक ही हो, लिखो जो कुछ मेरी जबान से निकले। सरकार ने फरमाया और कुरान ने तस्दीक की, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा। कुरान कहता है हमारा महबूब नहीं बोलता मगर वही इलाही के साथ, जो हम उनकी तरफ वही करते हैं वो तुम्हारी तरफ पहुंचा देते, जो हम वही करते हैं तुम्हारी तरफ पहुंचा देते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से नहीं बोलते, वही इलाही से बोलते, अपनी मंशा से, अपनी मर्जी से नहीं, जो हम उनकी तरफ वही करते हैं वही तुम्हारी तरफ पहुंचा देते। इसीलिए जो रसूल का हुक्म है वही खुदा का हुक्म, रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत, रसूल की फरमा बरदारी अल्लाह की फरमा बरदारी, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। कुरान ने कहा मन युती रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूल से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, जिसने रसूल से अदावत की उसने अल्लाह से अदावत की, जिसने रसूल के हुक्म को ठुकरा दिया उसने अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया। हुक्म रसूल और हुक्म खुदा अलग नहीं है, एक ही है, जो रसूल का हुक्म है वही खुदा का हुक्म। वो बदबख्त है जो ये कहते हैं कि हुक्म खुदा अलग है हुक्म रसूल अलग है, अलग है एक, जो रसूल का हुक्म वही अल्लाह का, रसूल की मोहब्बत अल्लाह की, अल्लाह चाहता है मेरे रसूल से मोहब्बत करो। और अल्लाह की शान देखो, कोई अपना महबूब किसी को नहीं देता, अपना महबूब कोई किसी को नहीं देता। और इस दुनिया का कायदा है कोई किसी से मोहब्बत करे और उसी से दूसरा भी मोहब्बत करे तो दुश्मनी शुरू हो जाती है, रकाबतें शुरू हो जाती हैं, अदावतें शुरू हो जाती हैं। अरे मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूं दूसरा क्यों कर रहा, मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूं तो दूसरा क्यों कर रहा। अपना महबूब कोई किसी को नहीं देता, जो जिससे मोहब्बत करता है चाहता है दूसरा मोहब्बत ना करे, लेकिन मेरे खुदा की शान ये है वो जिससे मोहब्बत करता है चाहता है सारी कायनात उससे मोहब्बत। सरकार को महबूब बनाया, ये मेरा महबूब है, अब सारी कायनात इससे मोहब्बत करे। और जो इनसे मोहब्बत करेगा कुरान कहता है युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना दे, वयग़फिरलकुम ज़ुनूबकुम तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे, वल्लाहु गफूरुर रहीम और वो बख्शने वाला मेहरबान। तो वो कहते नहीं जी हुक्म रसूल अलग है हुक्म खुदा अलग है, ये पता है कौन कहता है, जिसको एक के दो नजर आते हैं, जिसकी निकाहों में टेढ़ापन है, एक होता है ना भेंगा जिसे कहते हैं, मैंने साफ ही कह दिया, मैंने खामखे आपके समझ में नहीं आएगा तो साफ ही बता दो, जो भेंगा होता है ना उसको एक के दो नजर आते। एक उस्ताद बैठे थे, शागिर्द से कहा जाओ कमरे में से आईना लेकर आओ, वो गया, आया उस्ताद, वहां तो दो आईने हैं कौन सा लाओ, अरे दो हैं भाई एक ही है मेरी मेज पे रखा है उठा लाओ, फिर गया नहीं दो रखे, उन्होंने कहा ओहो समझ गए इसकी निगाह ही महंगा है बेचारा, इसको एक के दो नजर आ रहा, उसको समझाने की कोशिश की, देखो एक ही है ले आओ, बार बार कहता नहीं दो है, उनका अच्छा ऐसा करो एक को तोड़ दो दूसरा ले आओ, एक को तोड़ दो दूसरा ले आओ। उसने कहा ठीक है, वो गया देखा उस्ताद की मेज पे दो था तो एक ही उसको दो नजर आए, उसने उठा के जमीन पे मारा टूट गया और दूसरा भी टूट गया। अब बड़ा परेशान, अरे ये क्या हुआ। अब वापिस आया उस्ताद ने क्या हुआ, कहा उस्ताद जी वो तोड़ा तो एक था दूसरा खुद ब खुद टूट। उसने कहा बेवकूफ यही तो तुझे समझाना चाहता था वो एक ही, तूने दो समझा, एक को तोड़ा दूसरा खुद ब खुद टूट गया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इसी तरह ये लोग जो हुक्म खुदा हुक्म रसूल को अलग अलग कहते हैं ये दीन के भेंगे हैं, इनको दो नजर आ रहे हैं, ये हुक्म रसूल को तोड़ते हैं हुक्म खुदा खुद ब खुद टूट जाता। हुक्म रसूल को तोड़ोगे इताअत रसूल नहीं करोगे तो इताअत खुदा कैसे होगी, खुद ब खुद हुक्म खुदा टूट जाएगा अगर हुक्म रसूल को तोड़ोगे। एक ही है, इसी को एक शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में लिखा, वो लिखते हैं कौले हक कुरान है
कौले पैगंबर है हदीस, कौले हक कुरान है, कौले पैगंबर है हदीस, अहले दिल के वास्ते तकरीर है दोनों की एक, अहले दिल के वास्ते तकरीर है दोनों की एक, उसने फेरा दिल तो इसने दावत इस्लाम दी, उसने फेरा दिल तो इसने दावत इस्लाम दी, वो खुदा और ये नबी तदबीर है दोनों की एक, वो खुदा और ये नबी तदबीर है दोनों की एक।
बात समझ गए? हुक्मे रसूल वही है जो हुक्मे खुदा, इताअत रसूल वही है जो इताअत खुदा, मोहब्बत रसूल वही है जो मोहब्बत खुदा। ये अजीब लोग हैं, रसूल को छोड़कर खुदा की मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, रसूल की मोहब्बत को छोड़कर खुदा की मोहब्बत, रसूल की इताअत को छोड़कर खुदा की इताअत, ये कैसे हो सकता है? मन युति रसूल फकद अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत, इनको छोड़कर तुम्हें मिलेगा क्या? इन्हीं के दम से तो सब कुछ है, अगर वो ना आते तो कुरान कैसे मिलता? कुरान मिला तो उनके दर से, कुरान मिला उनके दर से, इस्लाम मिला उनके दर से, ईमान मिला उनके दर से, रहमान मिला तो उनके दर से, है उन्हीं के दम कदम से बागे आलम में बहार, वो न थे तो कुछ ना था और वो ना हो तो कुछ ना हो। ये पूरी कायनात मौजूद है, इस बात की दलील है, जिसकी वजह से ये कायनात है वो भी मौजूद, अगर वो ना हो तो कुछ ना। तो पता चला कि अकीदा रिसालत की अहमियत है, रसूल को मानो, और कैसा मानो? कुरान ने कहा आमिनू कमा आमनन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए, आमिनू कमा आमनन नास। और लोगों से मुराद कौन है? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन। कुरान उनकी मिसाल दे रहा है, मेरे रसूल को मानो तो ऐसे मानो जैसे इन्होंने माना, ऐसे ही मान लाओ जैसे ये ईमान लाए। अब मिसाल तो दे दी, ईमान कैसे लाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे माना, हमें ये कहा जा रहा है ना, ऐसे मानो जैसे लोगों ने माना, ऐसे ही मान लाओ जैसे लोग लाए। अब आओ दरअसल सहाबा का ईमान देखो, उन्होंने कैसे माना, किस तरह वो हुजूर की जात पर ईमान यकीन कामिल रखते थे। हजरत खुज़ैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा अजीम वाकया है और आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह से गुजर रहे, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ में वाकया मौजूद है, सरकार तशरीफ ले जा रहे, एक आराबी वहां पर आया, उसके पास एक घोड़ा था। सरकार ने पूछा इसकी कीमत क्या है, उसने कीमत बताई, आपने फरमाया ठीक है, कीमत तय हो गई, इस कीमत पर ये घोड़ा हम तुमसे लेंगे, सौदा तय हो गया ना। सरकार ने फरमाया मैं अभी अपने घर जाकर काशाने नबूवत पैसे लाकर मैं तुम्हें दूंगा, उसने कहा ठीक है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो और लोग भी आ गए उसके खरीदार, पूछने लगे क्या कीमत है, किस तरह बेचोगे, कितनी कीमत तुमने रखी है। अब उसने दिल में सोचा होगा कि अब तो मेरे पास घास ज्यादा आ गई, हो सकता है ज्यादा कीमत मिल जाए। उसने वहीं से पुकारा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये घोड़ा ले रहे हैं या नहीं, या मैं किसी और को बेच दूं? आपने फरमाया ना लेने की क्या वजह है, अभी तो हमने सौदा तय किया है, अभी कीमत तय हुई है, हमारी तुमसे बात हुई है, सौदा हुआ है। और आप जानते हैं कि जब खरीदार कोई चीज खरीदता है तो कुछ बहस मुबाहसा होता है, कीमत कुछ ऊपर नीचे होती, कुछ वो कम करता है, कुछ ये कम करता है, इस तरह करके फिर सौदा तय हो जाए। और जब सौदा तय हो जाए तो फिर वो चीज दूसरे को नहीं बेची जाती, क्या कितने ही पैसे ज्यादा मिल जाए क्योंकि तय हो चुका। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि हमसे तो तुमने तय कर लिया। उसने कहा नहीं कोई तय नहीं की, मुकर गया, कोई बात नहीं हुई। सरकार ने फरमाया अभी बात हुई है, इतने पैसे हम तुम्हें देंगे और तुम ये घोड़ा हमें दे दोगे। उसने कहा नहीं जी कोई बात नहीं हुई, और अगर हुई है तो कोई गवाह लाइए, कोई गवाह आकर गवाही दे दे कि हाँ इस कीमत पर ये सौदा तय हुआ तो मैं मान लूंगा। और ये बात उसने क्यों कही कि तीसरा कोई गवाही नहीं, तीसरा आदमी नहीं था, हुजूर पुन्नूर अलैहिस्सलाम थे और वो आराबी थे, इसीलिए उसने कह दिया कि अगर ये बात है तो आप गवाह लाइए। सरकार खामोश। अब आप देखिए, अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम चाहते किसी सहाबी की तरफ हल्का सा इशारा कर देते, खुदा की कसम वो बढ़कर गवाही दे देते। गवाही देता या नहीं देता? लेकिन आका ने ऐसा नहीं किया, आपने सिर्फ ये कहा कि देखो मैं तुमसे कह रहा हूं इस कीमत पर हमारा तुमसे सौदा हुआ है और हमने तुमसे कहा कि अभी हम घर जाके पैसे लेकर आते तुम्हें देते हैं। उसने मुकर किया, इनकार कर दिया, नहीं कोई सौदा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, और अगर आप कहते हैं हुई है तो गवाह लाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन एक आशिक रसूल बोल उठा, इश्क रसूल से सरशार इंसान चुप ना रह सका, बोल उठा, कौन? हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गवाही देता हूं कि आपने इससे इस कीमत पर इस घोड़े का सौदा किया है, मैं गवाही दे रहा हूं। सरकार ने पलटकर देखा, तुम तो मौजूद नहीं थे, तुम कैसे गवाही देते? जो मौजूद है वही गवाही दे सकते हैं ना, और जो मौजूद नहीं वो कैसे गवाही दे? एक आदमी है ही नहीं तो वो कहते कि नहीं ये चीज हुई। फरमाए क्या तुमने देखा है, क्या तुमने देखा? कहा देखा नहीं है, आपकी जबान से सुनकर गवाही दे रहा। सहाबी का ईमान देखो कितना पुख्ता ईमान था अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। गोया वो सहाबी ये कहना चाहते थे या रसूलुल्लाह क्या हमने खुदा को देखा है, क्या हमने जन्नत को देखा है, क्या हमने जहन्नम को देखा है, क्या हमने फरिश्तों को देखा है, क्या हमने मलाइका को देखा है, क्या हमने हुराने बहिश्ती को देखा है? हमने खुदा को नहीं देखा मगर मान रहे हैं, जन्नत को नहीं देखा मगर मान रहे हैं, जहन्नम को नहीं देखा मगर मान रहे हैं, फरिश्तों को नहीं देखा मगर मान रहे हैं। आपने कह दिया खुदा है, हमने मान लिया है। आपने कहा जन्नत है, हमने मान लिया है। आपने फरमाया जहन्नम है, हमने मान लिया है। आपके कहने से खुदा को मान रहे हैं तो ये नहीं मान सकते कि आपने सौदा तय किया। आपके कहने से इतने बड़े खुदा को मान रहे हैं तो ये नहीं मान सकते कि आपने सौदा किया है। मैं गवाही देता हूं, आपकी जबान से सुनकर गवाही दे रहा हूं। आपने कहा मैंने सौदा किया है, मैंने गवाही दे दी, हां किया। कैसा ईमान था और कैसा पुख्ता ईमान था हुजूर की जात। फिर क्या हुआ? इस पुख्ता ईमान का ब्लैंक फेक का रसूल की जात पर यकीन कामिल होने का नतीजा क्या मिला? समरा क्या मिला? इनाम क्या मिला? फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनो आज के बाद कोई किसी मामले में गवाही दे, एक की गवाही एक ही मानी जाए। एक की गवाही एक ही मानी जाती है, दो की तो नहीं। लेकिन मेरा ये सहाबी जिस मामले में गवाही देगा, इस एक के बजाय इसकी गवाही दो के बराबर मानी जाए, एक के बजाय दो के मुकाबले में इसकी गवाही दो के बराबर इसकी गवाही मानी जाएगी। ये उनको समरा मिला, नतीजा मिला, जबाने रिसालत से, दरबारे दरबारे रिसालत से इनाम मिला। हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला, इतना पुख्ता ईमान हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पर कि जब नबी की जबान से निकल गया तो यही हक, यही सच है, मैं गवाही देता हूं आपने इस कीमत पर सौदा किया। क्या तुमने देखा है? देखा नहीं, आपकी जबान से सुनकर मैं गवाही। इसी को कुरान ने कहा आमिनु कमा मनन्नास, ईमान लाओ जैसा कि लोग ईमान ले आए। और लोगों से मुराद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। अब क्या हुआ? ये वाकया तो हो गया, लेकिन अब आप देखें नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम का इल्मे गैब, यहां पर एक अकीदे की बात आ गई, इसलिए मैं ये बयान कर रहा हूं। हमारा अकीदा क्या है? हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम को इल्मे गैब है, है ना हमारा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात। और अकीदा क्या है? अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा, उसके बताने से उसका नबी भी जानता है। अल्लाह जानता है, उसके बताने से नबी भी जानता है। अल्लाह का इल्म जाती है, नबी का इल्म अताई है। बात समझ रहे? अल्लाह का इल्म जाती है, उसको कोई ना बताए तब भी वो जानता है। किसी को बताने की जरूरत है नहीं, उसका इल्म जाती है, कोई ना बताए तब भी जानता है। और नबी का इल्म अताई है, अल्लाह के अता करने से नबी भी जानता है, अल्लाह के अता करने से नबी भी जानता है। और अगर नहीं जानते तो कयामत तक होने वाले वाकयात की खबर क्यों दे दी? सरकार ने दी ना, अहादीस मौजूद, क़ुर्ब कयामत में क्या होगा सब कुछ हुजूर अलैहि सलातो वसलाम ने बता दिया। अक्सर निशानियां तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और बहुत सी निशानियां बाकी हैं, वो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। और हमारा ईमान है जो ज़बाने रिसालत से निकला वो होकर रहे। और ये तो हम तो मुसलमान हैं, काफिर भी ये जानते थे और मानते थे कि जो सरकार की जबान से निकल गया होगा। देखो हुजूर की शान, जान के दुश्मन हैं, खून के प्यासे हैं, मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई बात सरकार की जबान से निकल गई मानते ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकली है, ये होगा तो ये जरूर होगा। सरकार ने, एक काफिर ने जब गुस्ताखी की हुजूर की जबान मुबारक ने कहा ऐ इलाहुल आलमीन, अपने कुत्तों में से एक कुत्ते को मुकर्रर कर जो इसको खत्म कर दे, जबान मुबारक से निकल गया। काफिर ने सुना, डर गया, अरे मेरे बेटे के पीछे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए जरर ये पड़ गई, जरूर इसको कोई ना कोई मारेगा, खत्म करेगा। जब सफर पे जा रहे हैं तो लोगों से कह रहा है देखो मेरा बेटा सफर पे जा रहा, कोई हादसा ना हो जाए, इसकी हिफाजत करना। क्यों डर रहे हो? इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकल गया। काफिर है लेकिन मान रहा है कि इनकी जबान से जो निकला होगा, इसकी हिफाजत करना। जब सोने के लिए लेटो तो चारों तरफ लेट जाना, ऐसा नहीं कोई चरिंद परिंद कोई दरिंदा उस पर हमला कर दे, चले गए। सफर करते रहे, एक जगह पहुंचे जंगल में, उन्होंने उसको बीच में लिटाया और सारे काफिर चारों तरफ लेटे हिफाजत के लिए। जब बेखबर सो गए, एक शेर आया चलता हुआ, उसने सबके मुंह को सूंघा, सूंघ रहा एक एक के मुंह, और उसके बाद उनके ऊपर से कूदकर बीच में जो ये लेटा था गुस्ताखे रसूल, इसके मुंह को सूंघा और उसी वक्त चीर फाड़ करके मामला खत्म कर दिया। जबाने मुबारक से निकल गया था, हो गए। ये हुजूर की शान। तो हम तो मुसलमान हैं, हम तो गुलाम हैं, अरे जो काफिर हैं वो भी मानते हैं जो इनकी जबान से निकल गया वो होगा, होकर रहेगा। और उस वक्त के नहीं, आज तक के काफिर मानते हैं, अहादीस पढ़ते हैं, क़ुर्ब क़यामत की निशानियां पढ़ते हैं, उन अहादीस को मानते हैं, इनके नबी ने फरमाया है ये होगा। तो सहाबा का तो ईमान यकीन कामिल था, तो हुजूर ने क्या फरमाया? इसकी गवाही, एक की गवाही दो के बराबर, दो के बराबर। तो अर्ज ये कर रहा था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्मे गैब किस तरह? अब आप कहेंगे इसमें इल्मे गैब कहां से आ गया, ये तो वाकई सीधा सीधा चल रहा है, आपने इसमें इल्मे गैब ले, लेकिन इसमें एक अकीदे अहले सुन्नत की बात आई, इस वजह से मैं जिक्र कर रहा हूं। थोड़ा सा इससे हटकर एक वाकया, लेकिन उसका ताल्लुक इसी से है, इसलिए मैं बयान कर रहा हूं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला और सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला तशरीफ फरमा। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, हुफ्फाज़े किराम की एक कसीर तादाद जंग में शहीद हो गई, अगर इसी तरह होता रहा, हाफिज कुरान शहीद होते रहे, ऐसा ना हो कि अल्लाह का कलाम तल्फ हो जाए, जाया हो जाए, तो हमें चाहिए कि हम इसको जमा कर लें। आप जानते हैं ना, पहले हड्डियों पर, चमड़ों पर, पत्थरों पर कुरान की आयत लिखी हुई, जिस तरह आज हमें मिल रहा है कि आराम से किताब उठाई पढ़ लिया, ऐसा नहीं था। मुख्तलिफ जगह कुरान बिखरा हुआ था, मुंतशिर था। तो सबसे पहले तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना किया, फरमाया मैं वो काम नहीं करता जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार कहते रहे, गुजारिश करते रहे। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं उमर के बार बार कहने से मेरे रब ने मेरे सीने को इस काम के लिए खोल दिया और राजी हो गए कि चलो ठीक है कुरान को जमा कर। अब क्या हुआ, इन्होंने ऐलान किया जिस सहाबी के पास कुरान की जो आयत हो वो लेकर मस्जिद नबवी में पहुंच जाए, लेकिन अपने साथ दो गवाह भी लाए और वो गवाह आकर ये गवाही दें कि ये सहाबी जो आयत पेश कर रहा है वाकई कुरान की आयत। देखो एहतियात कितनी है, क्या उनको पता नहीं था ये कुरान की आयत? सिद्दीक अकबर फारूक आजम को पता नहीं था? पता था, लेकिन इतनी एहतियात की कि ऐसा ना हो कि अहादीस रसूल और कुरान की आयत खलत मलत ना हो जाएं, मिल ना जाएं। एहतियात का तकाजा, जो सहाबी आयत लेकर आए अपने साथ दो गवाह भी लेकर, दोनों बैठ गए। अब सहाबा आए, एक आयत पेश की, ये मेरे पास आयत है। उन्होंने कहा लाओ गवाह, ये दो गवाह है। उन्होंने गवाही दी, हाँ इन साहब ने जो आयत पेश की है हम गवाही देते हैं, बाकी कुरान की आयत। उनका चलो ठीक है शामिल कर दो। एक साहबी आए, दूसरे आए, तीसरे आते रहे, आते रहे, आते रहे, आयतें लाते रहे और ये दोनों साहबा सिद्दीक और फारूक उसमें शामिल करते रहे। सूरह तौबा की आखिरी आयत हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, और किसी के पास? कौन से साहबी? जिनकी गवाही को दो के बराबर करा दिया, सिर्फ उन्हीं के पास, और उनके पास कोई गवाह भी नहीं। गौर करो, कोई गवाह नहीं जो आकर गवाही दे कि हम वाकई ये कुरान की आयत है। जब वो आयत लेकर आए, ये मेरे पास आए थे, इन्होंने देखा, अब गवाह तो था ना, अगर गवाह नहीं होता तो आयत कुरान में शामिल नहीं होती, और कुरान में शामिल नहीं होती तो कुरान नामुकम्मल रह जाता, और ये हो नहीं सकता कि अल्लाह का कलाम नामुकम्मल रह जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाहें नबुव्वत और रिसालत से अपने बाद के हालात को देख रहे थे, सरकार जानते थे एक वक्त आएगा जब सिद्दीक और फारूक कुरान को जमा करेंगे और ये शर्त रखेंगे कि जो सहाबी आयत लेकर आए उसके साथ दो गवाह भी हों। सूरह तौबा की आखिरी आयत सिर्फ मेरे इस सहाबी के पास होगी, इसके पास गवाह नहीं होगा, गवाह नहीं होगा तो आयत कुरान में शामिल नहीं होगी, और शामिल नहीं होगी तो अल्लाह का कलाम नामुकम्मल रह जाए, और ये हो नहीं सकता कि अल्लाह का कलाम नामुकम्मल रह जाए। इसीलिए सरकार ने पहले ही उनकी गवाही को दो के बराबर करार दिया। और हुआ क्या, जब हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे, फारूक आजम मौजूद हैं, सिद्दीक अकबर मौजूद हैं, इन्होंने कहा यह कुरान की आयत है, मेरे पास कोई गवाह नहीं। फारूक आजम ने फरमाया खुज़ैमा तुझे गवाह की जरूरत ही नहीं है, मेरे आका ने पहले ही तेरी गवाही को दो के बराबर करा दिया। तुझे किसी गवाह की जरूरत नहीं है, मेरे आका ने पहले ही तेरी गवाही को दो के बराबर करार दे दी। आयत कुरान में शामिल हो गई, अल्लाह का कलाम मुकम्मल हो गया। ये शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर को इल्मे गैब था तभी हुजूर ने किया, और अगर ना करते तो क्या होता, कोई गवाही नहीं। कुरान को मुकम्मल होना था और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी शान दिखानी थी। अर्ज कर रहा था कि सहाबा का ईमान इतना पुख्ता था, वो जानते थे कि इनको मानने का नाम ही ईमान है, इनको जानने का नाम इस्लाम है, और इनको अपने दिल में बसा लेना यही तो मोमिन होना। कुरान ने कह दिया कि इनको मानो और ईमान लाओ ऐसे आमिनू कमा मनन्ना, जैसे लोग ईमान ले। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, तुम में से कोई एक उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे इतनी मोहब्बत ना रखे कि अपने औलाद से ज्यादा अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, तमाम से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना हो उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। इसी को हफीज जालंधरी ने अपने अशआर में पेश किया, वो फरमाते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हकी शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जानो माला औलाद से प्यारा। पिदर मादर बिरादर जानो माला औलाद से प्यारा। अब इस हदीस शरीफ में किसी से मोहब्बत की नफी नहीं, मना नहीं किया, मोहब्बत ना करो, अपनी बीवी से भी मोहब्बत करो, अपने बच्चों से भी मोहब्बत करो, अपने वालदैन से भी मोहब्बत करो, अजीजों रिश्तेदारों से भी मोहब्बत करो, दोस्त अहबाब से भी मोहब्बत करो, लेकिन मोहब्बत रसूल सारी मोहब्बतों पर गालिब हो जाए, सारी मोहब्बतों पर गालिब हो जाए। एक सहाबिया, एक औरत सहाबिया, उनको इत्तला मिली कि जंग में उनके अजीज और रिश्तेदार शहीद हो गए। वो मैदान जंग की तरफ दौड़ी, थोड़ी सी आगे बढ़ी, किसी ने कहा सुनो तुम्हारा शौहर शहीद हो गया। उन्होंने कहा ये बताओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या, सरकार खैरियत से हैं? फिर आगे बढ़ी, किसी ने कहा सुनो तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। कहा ठीक है बताओ मेरे आका का हाल क्या। और आगे बढ़ी, कहा तुम्हारा भाई शहीद हो गया। फिर आगे कहा तुम्हारा बाप शहीद हो गया। अजीजों रिश्तेदारों की शहादत की खबरें मिल रही हैं, लेकिन उस आशिका पर, सरकार की गुलाम जो औरत थी, सहाबिया थी, उस पर कोई गम नहीं है। जबान पर सिर्फ यही है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या। दौड़ी हुई जा रही, और जब मैदान जंग में पहुंची, हुजूर के पुरनूर चेहरे की तरफ देखा, उसका दिल ठंडा हुआ। कहा आका बाप खत्म हो जाए, बेटा खत्म हो जाए, शौहर खत्म हो जाए, सब शहीद हो जाए, सबको आप पर कुर्बान कर दूंगी, जब आप सलामत हैं तो मुझे कोई गम नहीं। जब आप सलामत हैं तो कोई गम नहीं। पता चला सबसे मोहब्बत करती थी, लेकिन मोहब्बत रसूल सारी मोहब्बतों पर गालिब। गोया हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें कसौटी बता दी। अगर किसी से पूछो मुसलमान है, हाँ जी मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। आप मोमिन हैं? जी हाँ मोमिन। सब यही कहेंगे ना, कोई ये तो नहीं कहेगा मुनाफिक, कोई कहेगा कि मुनाफिक होगा भी तो नहीं कहेगा। खैर वो तो सरकार ने निशानी बता दी, निशानी से समझ जाएंगे। लेकिन बहरहाल हर आदमी अपने आप को मोमिन कहता है, हर आदमी अपने आप को मुसलमान कहता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान को चेक करने की कसौटी बता दी, कसौटी बता दी। अगर अपने ईमान को चेक कर सकते हो तो देख लो तुम्हारे दिल में रसूल की मोहब्बत ज्यादा है या तुम्हारी औलाद की मोहब्बत, वालदैन की मोहब्बत ज्यादा है या रसूल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत ज्यादा है या रसूल की मोहब्बत। अगर दुनिया की मोहब्बत ज्यादा है तो मोमिन नहीं हो, और अगर मोहब्बत रसूल सारी मोहब्बतों पर गालिब है फिर तुम सही मानों में मोमिन। सहाबा ने करके दिखा दिया, अपना तन मन धन सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम पर कुर्बान कर दिया। हजरत जैद रदियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम, सरकार की साय में परवरिश पाई। वाकया तो तभी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूं किस तरह वो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। हुजूर की साय आतिफत में रहने लगे। अगर कोई अपने वालदैन से दूर हो, अजीजों रिश्तेदारों से दूर हो, किसी और आदमी की मिल्कियत में, उसकी गुलामी में, उसकी नौकरी में हो, तो उसको वो सुकून नहीं मिलता जो वालदैन के पास मिलता। ये फैक्ट है ना, हकीकत। अपने घर में जो सुकून है, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने वालदैन के साथ जिस तरह आदमी रहता है सुकून से, इत्मीनान से, किसी गैर के पास, किसी और की मिल्कियत में या उसकी नौकरी में, उसकी गुलामी में वो सुकून नहीं मिलता। लेकिन यहां मामला बरक्स, हजरत जैद रजी अल्लाह तआला को सरकार ने अपनी गुलामी में ले लिया, अपने साये आतिफत में रखा, रहते रहे हुजूर उसी मोहब्बत और शफकत से उनकी तरबियत भी फरमाते रहे। उनके वालिद और चचा को पता चला कि हमारा बेटा जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी गुलामी में, उस जमाने में लौंडी और गुलाम का सिस्टम था, यानी खरीद लिया करते थे, जैसे आज हम चीज खरीद लेते ना, किसी गुलाम को पैसे दिए खरीद लिए, अब वो बिल्कुल उस आदमी की मिल्कियत हो गया, वो चाहे उसे मारे, चाहे उसे जान से मार दे, कोई कुछ कहने वाला नहीं, इसका गुलाम। जर खरीद गुलाम जिसे कहते हैं ना, पैसे देकर खरीद लेना। अब मालिक उसके साथ कैसा ही सलूक करे, जिस तरह आप सुनते हैं हजरत बिलाल हकी रजी अल्लाह तआला के साथ, उमैया जो था कितना जुल्म करता था, कोई बोलने वाला नहीं, लेकिन जब सरकार के हुक्म से सिद्दीक अकबर ने खरीद के आजाद कर दिया, आजाद हो गए, फिर किसी की जरूरत नहीं कि उनको हाथ लगा। तो लौंडी और गुलाम की ये हैसियत थी। जब उनके वालिद को पता चला और चचा को पता चला, अच्छा हमारा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी, वो वहां से सफर करके सरकार की बारगाह में और आकर कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये पता चला है हमारा बेटा जैद आपकी गुलामी में है। फरमाया हां बेशक, हम उसको लेने के लिए आए, आप उसे हमारे हवाले कर दें, हमारा बेटा हमारी औलाद, हम उसको ले जाए। आपने फरमाया ठीक, मैं जैद को अभी तुम्हारे पास बुलाता हूं, मैं कुछ नहीं कहता, उससे पूछ लो, अगर वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो बेशक ले लो। उन्होंने कहा ठीक है। उनको तो पूरा यकीन था कि हमारा बेटा, जाहिर है बेटा तो बाप को देखकर इतने अरसे बाद देखेगा, तो कैसे जाने के लिए तैयार नहीं हो, वो तो बेचैन होगा बाप से मिलने के लिए, चचा से मिलने के लिए, खून ही रिश्ता। लेकिन ये नहीं जानते थे कि जो मोहब्बत सरकार ने दी है वो बाप भी नहीं दे सकते, वो तो रहमतुल आलमीन पूरी कायनात पे मोहब्बतें लुटा रहे हैं, रहमतें लुटा रहे हैं, करम लुटा रहे हैं। बुलाया हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार ने फरमाया इनको जानते हो? हाँ, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चचा, ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, ये चाहते हैं कि तुम इनके साथ चले जाओ। उन्होंने कहा बेटा चलो हमारे साथ, अरे इस गुलामी में तुम रह रहे हो, तुम तो आजाद हो, हमारे साथ चलो, मैं बाप हूं। उन्होंने कहा मैं चचा हूं, सब तुम्हें इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें याद कर रहे हैं, चलो अपने घर। हजरत जैद ने क्या कहा? नहीं, मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकता, मैं इस गुलामी को आजादी पर तरजीह दूंगा। हैरान हो गए, अरे ये क्या कह रहा। उनको नहीं पता था कि हजरत जैद रजी अल्लाह तआला उन्होंने वहां क्या देखा, सरकार की कैसी मोहब्बत, कैसी शफकत और कैसी रहमत दिन रात उन पर नाजिल हो रही, दिन रात हुजूर की ज्यारत से मुशर्रफ हो रहे, सरकार की साया आतिफत में है। इसलिए कि हजरत जैद रजी अल्लाह तआला ने जानते थे, क्या जानते थे, उन्होंने आजादी पर गुलामी को तरजीह दी। कोई है ऐसा गुलाम जो आजादी पर गुलामी को तरजीह दे? हर आदमी चाहता है ना मैं आजाद हो जाऊं, और जब किसी की मिल्कियत में हो तो क्या है, आका का हुक्म मानना है, जब वो कहे सो जाओ तो सोना है, जब कहे उठ जाओ तो उठना है, जब वो कहे ये काम करो तो करना है, तो गुलामी है ना। और आजादी में क्या है, अपने घर में आराम से जब चाहे। लेकिन आजादी पर गुलामी को तरजीह दी क्यों? वो जानते थे, क्या जानते थे हजरत जैद? ये जानते थे मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की।
खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की, ऐसा सलूक किया, ऐसी रहमत और शफ़क़त फरमाई कि आजादी पर गुलामी को तरजीह दी, बाप को छोड़ दिया लेकिन अल्लाह के हबीब को नहीं छोड़ा। ये है मोहब्बत, ये है हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, ये है मोहब्बत रसूल, और यही असल में मोमिन होना। बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, जान और माल से ज्यादा हुजूर अलैहि सलातो वसलाम से मोहब्बत, यही ईमान का हिस्सा है। अगर ये ना हो तो समझो ईमान कामिल नहीं। अगर किसी के दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल ना हो, सारी मोहब्बतों पर सरकार की मोहब्बत गालिब ना हो, तो समझ लो मोमिन नहीं हो। सरकार ने फरमा दिया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई एक मोमिन नहीं हो सकता। तो सहाबा की शान क्या थी कि उन्होंने अपना सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान कर दिया। वो जानते थे कि जब तक हमारी मोहब्बत इतनी कामिल नहीं होगी, उस वक्त तक हम सही मानों में मोमिन क्या मुसलमान नहीं है। तो अगर हमें अपने ईमानों को चेक करना है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत अपने दिल में इस दर्जे रखनी है कि सारी मोहब्बतें एक तरफ हो और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ। कुरान ने कहा आमिनु कमा आमनन्नास, ऐसे मानो जैसे लोग मान लें, ऐसे ईमान लाओ जैसे लोग ईमान ले आए। अब लोगों से मुराद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, उनकी जात को मारते हैं। जंगे बदर नहीं, सहाबा नहीं, जब तलवार उठाई तो उनके मुकाबिल कौन था? बाप के मुकाबिल बेटा था, मामू के मुकाबिल भांजा था, चचा के मुकाबिल भतीजा था, भाई के मुकाबिल भाई था। लेकिन जब तलवार उठाई तो ये नहीं सोचा कि मेरे सामने आने वाला मेरा बाप है, या मेरे सामने आने वाला मेरा मामू है, या चचा है। कोई रिश्ता नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि सामने आने वाला दुश्मन रसूल है और इसको मारने में इताते रसूल। सैयद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके साहबजादे ने उनसे कहा, कहा बजान एक जंग में आप मेरी तलवार की जद में थे। तलवार की जद यानी मैंने तलवार उठाई और आप बेखबर थे। अगर मैं चला देता आपका खात्मा हो, सर तन से जुदा होता, लेकिन मैंने बाप होने की वजह से छोड़ दिया। वो काफिरों की तरफ से और सिद्दीक अकबर मुसलमानों की तरफ से, मैंने छोड़ दिया। अब सुनो आशिक रसूल का जवाब। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया, बेटा तो ये कहते हैं कि आप मेरी तलवार की जद में थे, मैंने बाप होने की वजह से छोड़ दिया। आशिक रसूल ने जवाब दिया, बेटा तूने तो बाप होने की वजह से मुझे छोड़ दिया, अगर मेरी तलवार की जद में तू होता मैं कभी ना छोड़ता। मेरे सिर्फ पेश नजर ये होता कि सामने आने वाला बेटा है, बाप है, कोई भी है, दुश्मन है, रसूल है, इसको मारने में इताअत है रसूल। तूने तो छोड़ दिया, मैं कभी नहीं छोड़ता। ये है सहाबा का ईमान। अपने रिश्तेदारों को नहीं देखा, अजीजों को नहीं देखा, अपने अकरबा को नहीं देखा, किसी चीज को नहीं देखा, अगर देखा मोहब्बत रसूल को देखा, सरकार की मोहब्बत। और जब हिजरत की तो सारी चीजें छोड़ दी, वालदैन को छोड़ दिया, औलाद को छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया, दौलत को छोड़ दिया, ईमान की दौलत अपने सीने में लेकर हिजरत की और मदीने तैयबा पहुंच। वो जानते थे ये दौलत फिर मिल सकती है, लेकिन ईमान की दौलत अगर छिन जाए तो फिर नहीं मिल सकती, फिर मुश्किल हो जाएगी। पता ये चला कि अकीदा रिसालत इस्लामी अकाइद में बड़ी अहमियत का हामिल। बात आपने समझ ली, नबी क्यों आता है? नबी बंदों को खुदा से मिलाने के लिए आता है। नबी की जात रब और बंदों के दरमियान एक जरिया है, एक रابطہ है, एक वसीला है। इसीलिए खुदा ने नबी की जात को अपने और बंदों के दरमियान रखा। हमारे पैगामात बंदों तक पहुंचाओ, इनकी गुजारिशात हम तक पहुंचाओ। और अगर जो दरमियान में है उसी को नहीं माना तो ऊपर कैसे जाओ? ऊपर कैसे जाओ?
भाई आप किसी बिल्डिंग पे चढ़ेंगे तो चढ़ने के लिए क्या है, जीना, जीना है। दूसरी चीज लिफ्ट, आप कहेंगे नहीं मैं जीने से नहीं चढ़ना चाहता, अच्छा लिफ्ट ले लो, कह रहे हैं लिफ्ट से भी नहीं चढ़ना चाहता, फिर कैसे चढ़ो, कोई ना कोई तो जरिया होगा, ये तो नहीं कि रस्सी बांध के लटका दी ऊपर खींच लेते, जरिया चाहिए। और एक और बात याद रखो, नीचे से ऊपर जाने के लिए तो जरिया जरूरी है, वसीला जरूरी है, लेकिन ऊपर से नीचे आने के लिए जरूरी नहीं। आप ऊपर से नीचे आए, मैं लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा, अच्छा तो फिर आप जीने से उतर जाए, नहीं मैं ये भी नहीं करूंगा, अच्छा ठीक है, पीछे से धक्का दिया गए, कोई चीज इस्तेमाल नहीं करोगे, पहुंच जाओ, खुद ही पहुंच जाओ। तो वसीला नीचे से ऊपर जाने के लिए जरूरी, ऊपर से नीचे आने के लिए जरूरी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात वसीले को मानते हैं, नबी का वसीला हो, सहाबा का वसीला हो, अहले बैत का वसीला हो, औलिया का वसीला हो, सारे वसीले को मानते हैं, इसलिए कि हमें ऊपर जाना, हमें ऊपर जाना है। और जो कहते हैं वसीला नहीं चाहिए, समझ लो इसको ऊपर नहीं जाना, नीचे जाना, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको जरूरत नहीं है, जो ऊपर जा रहा है उसे जरूरत है। तो जाने के लिए जरूरी है ना, बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए जीने का वसीला या लिफ्ट का वसीला, ठीक है। तो खुदा तक पहुंचने के लिए नबी का वसीला, और जब नबी ही को नहीं मानोगे तो पहुंचोगे कैसे, नबी को नहीं मानोगे तो कैसे पहुंचोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक सरकार को नहीं मानोगे, ईमान की दौलत नहीं मिलेगी, ईमान की दौलत नहीं मिलेगी तो जन्नत नहीं, ईमान की दौलत नहीं मिलेगी तो जन्नत नहीं मिलेगी। तो मानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है, अहकामात पर अमल करना जरूरी है। तो हमें चाहिए कि इसी अकीदे पर कायम दाइम रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसी अकीदे पर कायम दाइम रखे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत में जिंदा रहें, और सरकार की सच्ची मोहब्बत में हमें मौत आए। कल इंशाअल्लाह हम खलीफे अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हालात वाकयात कारनामे आपके फजाइल और मनाकिब बयान करेंगे। आप हजरात इसी ज़ौक और शौक के साथ तशरीफ लाइए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।